नमस्कार भारत, तारीख 7 मई, दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दाश। यौन उत्पीड़न के आरोपों में चीफ जस्टिस को मिली क्लीन चिट, पीड़िता के सामने अब क्या है विकल्प?
सबसे पहले रिपोर्ट का चैलेंज हो सकता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जुडिशियल चुनौती दी जा सकती है, वो अपने भी चैलेंज कर सकती है।
सुनवाएंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ खास बातचीत।
अगर मैं आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मोदी जी अगर मेरे खिलाफ एक प्रमाण होता तो क्या मुझे छोड़ देते? मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान मुझे देशद्रोही बोलते हैं, सरकार उनकी थी। मैंने अपने आप को थाने में प्रस्तुत कर दिया है कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।
गर्भपात कराने की समय सीमा क्या हो, इस पर होगी खास रिपोर्ट। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। इस रिपोर्ट की एक कॉपी जस्टिस गोगोई को भी सौंपी गई है। हालांकि शिकायतकर्ता महिला को रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है। महिला का कहना है कि रिपोर्ट देखे बिना वो ये नहीं जान सकती कि उनके आरोपों को किस बुनियाद पर खारिज किया गया है। मेक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उस प्राइवेट प्लेन का मलबा मिला है जिसमें 11 यात्रियों समेत चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। प्लेन में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान लास वेगास से मोंटेरे जा रहा था। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि उनकी अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फिनलैंड में हुई मुलाकात अच्छी रही। फिनलैंड में अमेरिका और रूस समेत 8 देश आर्कटिक काउंसिल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पोम्पियो ने बताया कि उनकी लावरोव के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर भी चर्चा हुई। पोम्पियो के मुताबिक उन्होंने लावरोव से कहा कि ऐसा बर्ताव उचित नहीं है। पोम्पियो ने कहा कि बातचीत जिस तरह से हुई उससे उन्हें खुशी हुई।
It was a good conversation. We covered wide range of issues.
ये अच्छी बातचीत रही, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और मुझे लगता है कि सबने ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश की जिससे बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सके। मुझे यकीन है कि आपसी हितों के टकराव के बावजूद हम मसले सुलझाने का रास्ता खोज सकते हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रिंस हैरी और डचेस ऑफ सक्सेस मेगन मर्केल एक बेटे के माता पिता बन गए हैं। प्रिंस हैरी ने कहा कि वो और मेगन दोनों इसे लेकर बेहद रोमांचित हैं। हैरी ने इस दौरान साथ देने के लिए लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बताया कि मेगन पूरी तरह ठीक हैं और वो भी बच्चे का नाम सोच रहे हैं। प्रिंस हैरी ने कहा कि 2 दिन बाद वो एक घोषणा करने वाले हैं और इसी दौरान लोग बच्चे की पहली झलक पा सकेंगे। बच्चे के जन्म की खबर आते ही बकिंगम पैलेस घूमने आए सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनिए पोर्टोरिको से आई इस महिला की उत्साह भरी आवाज को।
I feel amazing, but today is I have a one day in London.
आज मैं अद्भुत महसूस कर रही हूँ। आज मैं एक दिन के लिए लंदन में हूँ और मेगन आज ही माँ बन गई, उसी दिन जिस दिन मैं लंदन में हूँ। ये अद्भुत है। ये थे लंदन घूमने आई एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के चुनाव आयोग ने इस्तांबुल में मेयर का चुनाव दोबारा कराने का आदेश दिया है। इस्तांबुल में मार्च महीने में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की पार्टी ने विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी पर फर्जी तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। अब वहां अगले महीने फिर चुनाव होगा, जिसमें एर्दोगान की पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री बिनानी यिल्दिरिम फिर से चुनावी मैदान में होंगे। उन्हें हराने वाले विपक्षी उम्मीदवार इकरेम इमामोलू ने इस फैसले की आलोचना की है। इस्तांबुल के कई हिस्सों में आम जनता भी इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा है। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद इस साल अप्रैल में टाइगर वुड्स ने अपना 15वां मास्टर्स खिताब जीता था। ट्रंप ने टाइगर को सभी के लिए प्रेरणा और बेहतरीन खिलाड़ी बताया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने एक बयान जारी कर इसे अन्याय बताया है। मामला यह है कि आंतरिक समिति की रिपोर्ट की एक कॉपी चीफ जस्टिस को सौंपी गई है, लेकिन शिकायतकर्ता महिला को रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं की जाएगी। इस बारे में कोर्ट की ओर से एक बयान जारी किया गया है कि इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट के 2003 के एक मामले के अनुसार आंतरिक प्रक्रिया के तहत गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से संपर्क साधा और उनसे जानना चाहा कि वो क्या मामला था जिसका हवाला देकर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि अब शिकायतकर्ता के पास क्या विकल्प हैं।
सबसे पहले तो एक्स पार्टी रिपोर्ट है, एक्स पार्टी रिपोर्ट का कोई महत्व होता नहीं है। दूसरी बात, She didn't get an opportunity to have a lawyer of her choice. Legal representation भी एक fundamental right होती है, और उसके अलावा इन 3 judges को किसने चुना हमें कुछ पता ही नहीं है
जी।
ना तो कोई notification है, ना तो full court resolution है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 20 तारीख को चीफ जस्टिस खुद बेंच पे बैठे हैं, उस दिन के बाद जो भी हुआ बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है, तो इसलिए इस रिपोर्ट का मुझे कोई महत्व लगता नहीं है।
इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ऐसा सेक्रेटरी जनरल की उस विज्ञप्ति में लिखा गया है, और एक केस का हवाला दिया गया है जो आपने ही 2003 में लड़ा था, वो आप हमें बता पाएंगी?
वो भी एक सेक्शन हैरेसमेंट का ही केस था। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आरोप लगा था, उस समय एक पब्लिक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था और एक इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी में मैं भी गई थी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जब रिपोर्ट आई मैंने सुना कि उस मामले को भी इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी और मैंने कहा कि रिपोर्ट की कॉपी मिलनी चाहिए। उस मेरे पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीशन दिया, हम आपको ये रिपोर्ट की कॉपी नहीं देंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि उस समय फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं थी, अब है
सूचना का अधिकार कानून।
अब ये नया कानून आ गया है, अब कानून बदला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदलना पड़ेगा, इसलिए मैं मानती हूँ कि वो फैसला इस केस को लागू नहीं हो सकता है।
तो अब जो शिकायतकर्ता हैं उनके पास क्या रास्ते खुले हैं? रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने कहा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कि उन्हें नहीं मिली है और ना ही मिलेगी।
सबसे पहले रिपोर्ट का चैलेंज हो सकता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जुडिशियल चुनौती दी जा सकती है। वो अपना डिसमिसल ऑर्डर भी चैलेंज कर सकती है, वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है।
और ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि कानूनी तौर पर उनके सामने खुलने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, खासतौर पर क्योंकि रिपोर्ट की प्रति नहीं है उनके पास। क्या ये उनको किसी तरीके से सीमित करता है वो जो कदम उठा सकती है उसमें?
बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो वो इस रिपोर्ट की कॉपी मांगने के लिए कोर्ट भी जा सकती है, और उसके अलावा रिपोर्ट हो ना हो उनका फैसला जो भी हो, लेकिन उसके सामने बहुत सारे रास्ते हैं।
कई हलकों में कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट ही अब एक रास्ता है किसी भी तरह की कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ करवाने का।
जी जरूर है,
पर ये इकलौता रास्ता नहीं है।
इकलौता रास्ता नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का जज का था उसका इम्पीचमेंट हुआ था, एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट डाला था, उसके बारे में इम्पीचमेंट हुआ था राज्यसभा की तरफ से।
ये थी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ओर से रात 8:15 तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 62.56% वोट मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक रहा, जहां करीब 74% से अधिक वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में सबसे कम करीब 8.5% वोटिंग दर्ज की गई। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 425 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और इसके बाद 6ठे और 7वें चरण के मतदान में 118 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन इस बीच जिन सीटों पर अभी मतदान नहीं हुआ है उन पर प्रचार जोरों पर है। सोमवार की अहम राजनीतिक हलचल क्या क्या रही, इस पर ब्यौरा सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से।
सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के तामलुक में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने चक्रवात फणी के बहाने ममता पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस भयंकर तूफान में राज्य के हालात जानने के लिए ममता बनर्जी को बार बार फोन किया तो उन्होंने बात नहीं की।
चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा शायद दीदी वापस मुझे फोन करे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी की उस बयान को लेकर आलोचना हो रही थी जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कह दिया था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी इस टिप्पणी पर पलटवार किया था, मगर सोमवार को झारखंड के चाईबासा में एक रैली में मोदी ने चुनौती देते हुए कहा,
अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है, आपके उस पूर्व प्रधानमंत्री के जिसको लेकर के दो दिन से आप आंसू बहा रहे हो, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, आ जाओ मैदान में, आप पे हिम्मत है आइए पंजाब में उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। उन्होंने मोदी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।
56 इंच की छाती वाला बॉक्सर रिंग में उतरा, बड़ा धूमधाम हुआ, जैसे बॉक्सर अंदर आता है मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में, आया पहला काम करता है कोच की ओर देखा, अडवाणी की ओर देखा, एक घूसा अडवाणी जी के मुंह में मारा, बड़ा अडवाणी जी चौंक गए, फिर वो अपनी टीम के पीछे भागा, गडकरी जी अरुण जेटली जी एक एक करके धार 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 सबको मारा, जनता देख रही है भैया ये क्या कर रहा है बॉक्सर।
उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि वो उनके परिजनों पर जितना भी प्रहार कर लें, बदले में मेरी तरफ से आपको प्यार ही मिलेगा। सोमवार को राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में भी मतदान था, जहां उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर इस बात को लेकर निशाना साधा कि मतदान वाले दिन वो अमेठी में नहीं थे।
मेरा इतना ही मानना है कि राहुल जी ने आज तक किसका साथ निभाया, महागठबंधन ने उनका साथ छोड़ दिया, ममता जी उनको तवज्जो नहीं देती, आज लेफ्ट की पीठ पे छुरा भोंक दिया जिनके सहारे से वो सत्ता में सुख भोग चुके हैं, तो राहुल गांधी ना अपनों के हुए ना परायों के हुए।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर कहें तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस की विरासत को भ्रष्ट नंबर एक कह दें तो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है।
रिपोर्ट सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां राजधानी भोपाल में चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प बन रहे हैं। यहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्व चेहरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा है। साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाएंगी, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का साक्षात्कार सुनाया था। उन पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन करने के लिए 72 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया था। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने प्रज्ञा ठाकुर के प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह से बात की और सबसे पहले उनसे प्रतिक्रिया मांगी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई पाबंदी पर।
मैं तो चाहता हूं कि वो जितना बोले उतना अच्छा है, क्योंकि उनके वक्तव्यों का अपना अलग ही लहजा होता है।
अच्छा, ये बताइए कि एक नई कंट्रोवर्सी जो है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो है उठाई जा रही है।
मैं नहीं समझ पाता कि जो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, जिसमें कि 3 प्रधानमंत्री हुए, उस परिवार का व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरी नागरिकता क्यों लेगा, सवाल ही नहीं उठता, मजाक है ये।
तो इस बार तो कह रहे हैं कि कोई ब्रितानी नागरिकता है उनके पास, तो उसका क्या?
झूठ 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 ये इनको सिखाया जाता है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो।
किनको सिखाया जाता?
भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को।
इस बार लगता है कहा जा रहा है, और हम भी देख रहे हैं आपसे बात करते हुए, कि दिग्विजय सिंह जो बड़े मुखर नेता रहे हैं, थोड़ा संभले हुए हैं, थोड़ा संभल के।
मैं हमेशा संभल के बयान देता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं, मैं हमेशा संभल के बयान देता, पहले भी देता था, आज भी देता हूँ और कल भी दूंगा।
ये बताइए कि साध्वी प्रज्ञा खुलेआम आपके ऊपर जो है हर तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, आतंकवादी तक आपको कहा उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो उसका लिया, अब आप एक्शन उस पर हुआ और उस उन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया, लेकिन आपने मतलब आप जो है बहुत ही खामोश रहे।
पहली बात तो मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ तो मेरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, उनको जो बोलना है बोले, मेरे विरुद्ध जो उनको आरोप लगाना लगाएं, सप्रमाण लगाएं तो मुझे प्रसन्नता होगी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मोदी जी अगर मेरे खिलाफ एक प्रमाण होता तो क्या मुझे छोड़ देते? मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान मुझे देशद्रोही बोलते हैं, सरकार उनकी थी, मैंने अपने आप को थाने में प्रस्तुत कर दिया है कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ये लोग बिना सिर पैर की बातें, बिना प्रमाण के बोलने की इनकी आदत है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता उसे सच समझ लगती है, इनको सिखाया जाता है।
नहीं, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो झूठ और फैलता रहेगा।
जवाब तो मैं दे चुका, गिरफ्तार करो, और इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता है।
ये बताइए कि आखिरकार ये लोग आपसे, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा क्यों खफा हैं, इतना ज़्यादा क्यों क्यों चिढ़ते हैं?
मुझसे इसलिए चिढ़ते हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं शुद्ध रूप से धर्म को निजी मानता हूँ, और ये निजी मेरे और मेरे परिवार तक सीमित है, बाकी जिसको जो कहना कहें।
लेकिन वो तो कहते हैं कि आपका ये जो पूरा धर्म की बात है, या कांग्रेस की धर्म की जो बात है, ये पूरा जो है एक तरह का ढोंग है, एक तरह का ढकोसला है, नाटक है।
क्या 3100 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पैदल 6 महीने 10 दिन तक ये ढोंग है? क्या आज से करीब 30 साल से लगातार मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करता रहा हूँ पैदल, क्या ये ढोंग है? आज से 20 साल पहले से हर एक आषाढ़ी एकादशी को मैं पंडरपुर जाता हूँ विठोबा के दर्शन करने के लिए, ये क्या ढोंग है? मैं तुलजा भवानी के दर्शन करने जाता हूँ, क्या ये ढोंग है? मेरे घर में आज नहीं पुश्तैनी चले आ रहे, 7 मंदिर हैं जिसमें 4 में अखंड ज्योत जलती है, ये क्या ढोंग है? मैं अच्छा सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
तो ये बताइए, लेकिन उनका इल्ज़ाम तो ये है कि आपने जो है वो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद और सैफरन टेररिज्म जैसे शब्दों का जो है वो आपने क्वाइनेज किया।
मैंने एक बार भी ना भगवा आतंकवाद कहा, ना हिंदू आतंकवाद कहा। जिन्होंने कहा उनको उन्होंने बीजेपी का टिकट दे के MP बना दिया, RK सिंह को। जिन्होंने सत्येंद्र पाल सिंह, जो कि पुलिस कमिश्नर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भगवा आतंकवाद कहा था, उसको भी उन्होंने MP भी बनाया और मिनिस्टर भी बनाया। उनको ऐसे लोग पसंद हैं क्योंकि उससे उनको अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। मैंने हाँ संघीय आतंकवाद कहा था और आज भी कहता हूँ।
संघीय आतंकवाद से क्या आपका आशय है?
कि जितने भी ये पकड़े गए हैं धर्म के नाम पर, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में पकड़े गए हैं, वो सब इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। अभिनव संस्था किसकी है? अभिनव भारत संस्था किसकी है? कौन लोग हैं?
ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। सिंधु वासिनी हमारे साथ स्टूडियो में हैं अखबारों के साथ। सिंधु, बताएं पहले पन्नों पर आज क्या दिख रहा है?
मानसी, जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट मिलने की खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, अलग अलग सुर्खियों के साथ, अलग अलग हेडिंग्स के साथ, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग काफी दिलचस्प है, जो है जस्टिसेस डिक्लेयर इन वन वॉइस चीफ इज इनोसेंट। और एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा है कि बिहार के बालिका आश्रय गृह मामले की जांच 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए, और अदालत ने CBI से 3 जून को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने आदेश दिया है। और इससे पहले CBI ने सुप्रीम कोर्ट में ही हलफनामे में दावा किया था कि जो इस मामले में अभियुक्त हैं ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगी ने 11 बच्चियों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में खबर है कि लोकपाल सह नैतिक अधिकारी न्यायमूर्ति DK जैन ने सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण को हितों के टकराव के कथित मामले की सुनवाई के लिए अपने यहाँ पेश होने को कहा है, और ये दोनों 14 मई को उनके यहाँ पेश होंगे।
मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के संजीव गुप्ता ने सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि ये दोनों क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य हैं और इसके अलावा सचिन मुंबई इंडियंस के आइकन और वीवीएस लक्ष्मण सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो कि एक दोहरी भूमिका है। दोनों ने आरोपों से इनकार किया है और सचिन ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई इंडियंस से कोई पैसे नहीं मिलते, आर्थिक लाभ नहीं मिलता, तो ये आरोप उन्होंने खारिज किया। और द हिंदू में एक खबर है अनूठे जुगाड़ के बारे में। पाकिस्तान के एक पॉपकॉर्न बेचने वाले व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद फयाज है, उन्होंने खुद के लिए जुगाड़ से एक प्लेन बनाया है। इसके लिए उन्होंने एक रोड कटर का इंजन और ऑटो रिक्शा के टायर का इस्तेमाल किया और उनका कहना है कि पंख के रूप में उन्होंने बस्ते का इस्तेमाल किया है। उनका दावा है कि उनका ये छोटा प्लेन उड़ान भर सकता है, लेकिन अभी इस दावे की पुष्टि होनी बाकी है
जी।
और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तस्वीर है, जिसमें दोनों फणी से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं
जी। कल इस बात की भी चर्चा बहुत थी कि मोदी ने कहा है कि नवीन पटनायक ने
अच्छा काम किया
जी,
है
जी, इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद सिंधुवासिनी। और अब वक्त है एक स्पेशल रिपोर्ट का। किसी महिला के लिए गर्भपात कराने की समय सीमा क्या हो, 20 या फिर 24 हफ्ते? मद्रास हाईकोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि वो बताएं कि गर्भपात की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करने में कितना समय लगेगा। कोर्ट में भी ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें समय सीमा से आगे गर्भपात की मांग की गई है। इस मांग की वजहों सहित इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी ने, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने भारत सरकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यानी गर्भपात कानून में संशोधन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि गर्भपात की सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने के लिए संशोधन करने में कितना समय लगेगा। मौजूदा गर्भपात कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में सिर्फ 20 हफ्ते तक ही गर्भपात कराने की इजाज़त देता है, लेकिन ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं जिनमें 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भधारण में गर्भपात की अनुमति मांगी जाती है। इनमें रेप के कारण हुए गर्भधारण के मामले भी होते हैं। ये मांग बार बार क्यों उठती है और क्या समय सीमा को 24 हफ्ते करने की कोई गुंजाइश है, इसे लेकर हमने वर्धमान महावीर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और सफदरजंग अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या पांडे से बात की। उन्होंने बताया कि कई ऐसी विसंगतियां हैं जो 20 हफ्ते के भ्रूण में पता नहीं चल पाती हैं।
जो हम ये एनोमली स्कैन कराते हैं, एनोमली का मतलब कोई बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, कोई जन्मजात जो खराबी होती है, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है ना स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं 18 to 22 weeks। अब क्योंकि MTP एक्ट 20 वीक्स तक अलाउ करता है तो उसको पहले करते हैं, मतलब 18 to 20 के बीच में किया जाता है। बट अगर हम रेडियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग करते हैं स्कैन, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनके हिसाब से 20 to 22 weeks से और अच्छा रेडियोलॉजिकल व्यू होता है, वो इम्प्रूव होता जाता है। कई बार होते हैं बच्चे आते हैं, छोटी बच्चे अचानक उनका पता चलता है 7 months की प्रेगनेंसी है, 8 months की प्रेगनेंसी है, तो वी हैव नो ऑप्शन, वी कैन नॉट गो फॉर एमटीपी, हम फिर उसमें से डिलीवरी कराते हैं।
चिकित्सक बताते हैं कि 20 हो या 24 हफ्ते दोनों में लेबर पेन देकर प्रसव के जरिए गर्भपात कराया जाता है, लेकिन 24 हफ्तों के गर्भपात में बच्चे के जिंदा बाहर आने की संभावना बनी रहती है। मैक्स अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू खेमानी इस पर कहती हैं।
कई बार क्या होता है, बच्चा जिंदा आएगा, बच्चा रोएगा, तो ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि क्या आप उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालोगे, क्योंकि आजकल तो 25 हफ्ते के बच्चे भी बचाए जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे ना ट्रिकी मामला हो जाएगा। हफ्ते का बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा होता है, वो जिंदा नहीं होता, पर 24 हफ्ते के बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है।
अगर ये बदलाव किया जाता है तो किन कानूनी पक्षों का ध्यान रखना होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मोनिका अरोड़ा का कहना है।
गर्भपात चाहिए तो उसके लिए अगर माँ नहीं चाहती है लड़की है, ये कोई रीजन नहीं है, ये इलीगल होगा। लेकिन बच्चा डिफॉर्म्ड है तो क्या वो ऐसा ही बच्चा अपने आप को सस्टेन कर पाएगा क्या, या माँ की लाइफ को रिस्क है, तो ये भी देखना होगा। इन ऐसी रेयर कंडीशंस में गर्भपात कोर्ट की डायरेक्शन से या लॉ में भी आप ला सकते हैं कि वो अलाउड होना चाहिए। मुझे लगता है एक वाइडर कंसेंसस बनना चाहिए।
गर्भपात कानून में बदलाव के लिए साल 2014 में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें गर्भपात की समय सीमा को 24 हफ्तों तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस संशोधन का जिक्र करते हुए अपना आदेश सुनाया है। कमलेश मठेनी, बीबीसी दिल्ली।
अब एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका का कहना है कि ईरान को स्पष्ट संदेश देने के लिए मध्य पूर्व में उसने अपना एक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एक बॉम्बर टास्क फोर्स तैनात किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला कई परेशान करने वाले और उकसाने वाले संकेतों और चेतावनियों के जवाब में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान को लेकर चिंतित होने की पर्याप्त वजहें हैं।
We have continued to see activity that leads us to believe that there's escalation that may be taking place.
हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम मानते हैं कि ईरान की तरफ से लगातार उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि मौका पड़ने पर राष्ट्रपति के पास सभी विकल्प मौजूद हों। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। माइक पोम्पियो ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन उकसाने वाले कदमों के बारे में बात कर रहे हैं। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले बीबीसी संवाददाता जोनाथन मार्कस मानते हैं कि खाड़ी देशों में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या इसकी युद्धक टुकड़ी को भेजा जाना असामान्य बात नहीं है। हालांकि इन क्षेत्रों में जमीन और हवा से मार करने वाले हथियारों को फिर से भेजा जाना थोड़ा असामान्य है। वो मानते हैं कि हाल के महीनों में अमरीका ईरान पर दबाव बना रहा है। अमरीका ने मध्य पूर्व में अपना युद्धपोत ऐसे वक्त भेजा है जब उसके और ईरान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अमरीका पहले ही ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुका है, जिसका सीधा असर माना यह जा रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इधर ईरान भी कहता रहा है कि अगर ईरान को और ज्यादा विद्वेष का सामना करना पड़ेगा तो वो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलसंधि मार्ग को बंद कर सकता है। और इस खबर के बाद अब चलते चलते सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर आज चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2019 के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस से भिड़ने वाली है और ये मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक पर होगा। चेपक वही मैदान है जहां पर मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेटों से हराकर क्वालिफायर एक के इस मुकाबले के लायक बने थे। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 18 अंकों के साथ आमने सामने हैं, लेकिन रन रेट के हिसाब से मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से आगे है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही 3 बार की चैंपियन रही हैं। तो वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे ऑलराउंडर केदार जाधव कंधे में चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रविवार रात किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में जाधव को चोट लगी थी। इस चोट से उभरने में केदार जाधव को 2 हफ्ते का समय लगेगा। ऐसे में वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टूर्नामेंट से बाहर किया गया है। तो वहीं आईपीएल के शोर से अगर बाहर निकलें तो क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर परेशान नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उनके हित समाधान योग्य श्रेणी में आते हैं। सचिन ने कहा कि मौजूदा हालात के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही जिम्मेदार है। दरअसल मामला ये है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने नोटिस दिया है। नोटिस हितों के टकराव से जुड़े मामले के लिए दिया गया है। दोनों खिलाड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के मेंटोर और बीसीसीआई के क्रिकेट सलाहकार समिति यानी कि सीएसी के सदस्य के तौर पर दोहरी भूमिकाएं निभा रहे हैं। सचिन मुंबई इंडियंस के जबकि लक्ष्मण सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर हैं। लोकपाल जैन ने 28 अप्रैल तक इन दोनों खिलाड़ियों और साथ में बीसीसीआई से भी लिखित में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें बीसीसीआई ने ये कहा था कि सचिन तेंदुलकर समाधान योग्य श्रेणी में आते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई के इस बयान को खारिज कर दिया है। सचिन ने बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी और लोकपाल डीके जैन को दिए 13 पॉइंट के अपने जवाब में कहा है कि वे प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय और सीईओ राहुल जौहरी से पूछें कि सीएसी में उनकी भूमिका क्या है।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया है। शिकायतकर्ता महिला ने इसे अन्याय बताया है। मेक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उस प्राइवेट प्लेन का मलबा मिला है जिसमें 11 यात्रियों समेत चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। प्लेन में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।